Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse number 24 and 25. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 24। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहं स्कंद सरसा मस्मिर सागर। पुरोधसाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् Srinani namaham skandaha Sarasamasmi sagaraha Purodhasam cha mukhyam Vittipata brihaspatim Sinani namaham skandaha Sarasamasmi sagaraha Shabdat Purodhasam artha samast purohito me cha bhi mukhyam yani mukhya mam yani mujhko viddhi partha he partha viddhi yani jano brihaspati senani nam yani samast sena nayako me aham mehu skanda kartikeya Sarasamasmi sagara. Sarasayani samast jalashayo me asmi mehu sagara yani samudra. Anuvad. He Arjun. Mujhe samast purohito me mukhya purohit brihaspati jano. Mehi samast sena nayako me kartikeya hu aur samast jalashayo me samudra hu. शिला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय हो। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। विभूति योग यानी भगवान का ऐश्वर्य। भगवान हमें मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं ताकि इन मुख्य ऐश्वर्यों के विषय में श्रवण करके भगवान की महानता को, क्योंकि जितना जितना हम श्रवण करेंगे उतना उतना हम भगवान की ओर आसक्त होंगे, उतना उतना भगवान से हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। क्योंकि जितना जितना भगवान के विषय में श्रवण करते जाएंगे और भगवान की महानता के विषय में पता चलता जाएगा तो हमें भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो और भी डिवेलप होती जाएगी। तो भगवान आज मुख्य मुख्य जो महान विभूतियां हैं उनके विषय में अधिक बता रहे हैं। पहले कहते हैं प्रोधसाम च मुख्यम मां। प्रोधसाम कहते हैं पुरोहित। जैसे जो भी राजा होता है उसके पास पुरोहित होता है, हित यानी हित करने वाला, जो उसका कल्याण करने वाला, यानी ऐसी बात बताए जिससे उस राजा के का कल्याण हो, उसकी समस्त प्रजा का कल्याण हो, इसको बोलते हैं पुरोहित। तो इस भौतिक जगत में तो कुछ पुरोहित होते हैं, वो राजा को ऐसी सलाह देते हैं, ऐसी एडवाइस देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जिससे वो ऐसा कार्य करता है जिससे लोगों का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। लेकिन यहाँ के पुरोहित में और यहाँ के राजा में अगर महानता देखा जाए तो भगवान ने क्या कहा, राजा श्लोक नंबर 22 में भगवान ने कहा कि देवानाम अस्मि वासवः, जितने भी देवता हैं उनमें मैं इंद्र हूँ। अब इंद्र देवताओं का राजा है, उसी तरह जितने ही पुरोहित हैं उनमें आज भगवान कहते हैं प्रोधसाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पति। तो जितने भी राजा हैं उनका एक एक पुरोहित होता है, परंतु जिस तरह राजाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वह राजा है जो स्वर्ग का राजा है। ये स्वर्ग भी भौतिक ब्रह्मांड का एक लोक है, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में हम तो पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी के राजाओं में उतना पावर उतनी क्षमता नहीं होती है जितनी के स्वर्ग के राजा इंद्र में होगी। उसी तरह पृथ्वी के पुरोहितों में इतनी बुद्धि नहीं होती है जितनी के स्वर्ग के पुरोहित में होती होगी। पुरोहित यानी सबका कल्याण करने वाला। तो भगवान आज बताते हैं कि वैसे तो बहुत सारे पुरोहित हैं सारे राजाओं के कोई ना कोई, परंतु प्रोध साम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पति। मैं बृहस्पति हूँ जो कि पुरोहित किसका है, इंद्र, स्वर्ग लोक के जो राजा हैं इंद्र, उन बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं। और इस तरह से आज तक जितने जितने देवताओं ने कार्य किए हैं, जितने जितने देवताओं ने यश प्राप्त किया है, देवताओं ने जिस प्रकार से अपने कल्याण के लिए कार्य किए और समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य किए, तो वो सब मास्टरमाइंड पुरोहित जो है वो कौन है, बृहस्पति हैं, जिनकी कृपा से वो सब कर चुके हैं कर सके हैं। इसलिए जितने भी पुरोहित हैं उनमें सबसे ज्यादा मुख्य जो पुरोहित है वो कौन है, बृहस्पति जी हैं। भगवान कहते हैं मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। आगे कहते हैं सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद कार्तिकीय का एक नाम है, शिव जी और पार्वती जी के पुत्र जिसको कार्तिकीय भी कहते हैं उनका नाम है स्कंद। वो मिलिट्री कमांडर में जो जनरल हैं, वो सारी जितने भी युद्ध होते हैं देवता लोग क्या असुरों के साथ जब भी युद्ध होता है तो वो सेनापति बनते हैं। तो भगवान कहते हैं जितने सेना नायक हैं जिनके कारण अधर्म का नाश होता है और धर्म की विजय होती है, उनमें सबसे ज्यादा महान जो कमांडर है, महान जो सेना नायक है वो है स्कंद यानी कार्तिकेय, और वो मेरी एक विभूति है। आगे भगवान कहते हैं सरसाम अस्मि सागरा यानी जलाशयों में। अब संसार में देखें तो बहुत सारे जलाशय हैं, जैसे दरिया हैं, नदियां हैं और रिवर्स और ये सब, लेकिन वो सब में सबसे ज्यादा बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, समुद्र है, सागर है। और सागर से बड़ा जलाशय कभी कोई, सागर का कोई अंत नहीं है, सागर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं मैं जलाशयों में सागर हूँ। यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं कि जो कुछ भी महान दिख रहा है, जैसे भगवान यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। जो कुछ भी हमें चीफ दिख रहा है, जो कुछ बहुत ह्यूज है, बहुत महान है, बहुत सुपीरियर है, वो भगवान कहते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा एक अंश है। तो हमें यहाँ सोचना चाहिए कि जब भगवान का अंश जो है वो ही संसार में सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि अगर हम पुरोहितों में देखें तो सबसे ज्यादा महान पुरोहित कौन है, बृहस्पति है, और सेना नायकों में स्कंद है, और सागर से महान कोई बड़ा जलाशय नहीं है। तो ये तो सिर्फ भगवान की छोटी सी, आगे भगवान बताएंगे, एक छोटी सी सफुलिंग मात्र है। जैसे एक बहुत बड़ी अग्नि है उसमें से एक चिंगारी को अलग कर दिया जाए तो ये सारा संसार जितनी भी विभूतियां हैं वो भगवान की एक चिंगारी के बराबर है। भगवान एक इतनी विशाल अग्नि है जिसका थोड़ा सा एक स्पार्क है। और तो फिर हम भक्त लोग को ये सुनकर ऐसा लगता होगा कि ये भगवान कितने महान हैं, कितना भगवान विशाल है, जिनकी छोटी सिंघाई जो है वो इस भौतिक जगत में सबको आकर्षित करती हैं ये वस्तुएं, और भगवान स्वयं कितने आकर्षक हैं, कितने ज्यादा महान हैं, विशाल हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सासा भगवान के इन शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, महर्षीणां भृगुर् अहम् गिराणां अस्मीकमक्षरणम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय महर्षीणां भृगुरहम् गिराणां अस्मीकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः महर्षीणां भृगुरहम् महर्षीणां भृगुरहम् गिराणां अस्मीकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। शब्दात् महर्षीणां भृगुर् अहम्, शब्दात् महर्षीणां भृगुर् अहम्, महर्षीणां यानी महर्षियों में भृगुर् अहम्, भृगु ऋषि अहम् यानी मैं हूँ, गिराणां यानी वाणी में, अस्मि मैं हूँ, एकम अक्षरम, एकम अक्षरम यानी प्रणव, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम यानी समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ यानी कीर्तन या जप अस्मि मैं हूँ, स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम यानी जड़ पदार्थों में, हिमालय हिमालय पर्वत हूँ। अनुवाद, मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए, उनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि है। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का स्वरूप है, समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता, यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोकों में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षीणां भृगुर् अहम्, जितने भी बड़े बड़े महर्षि हैं, श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। अब जब ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले थे, करने के समय उन्होंने हर योनियों के विस्तार के लिए एक एक पुत्र उत्पन्न किया, यानी मनुष्यों के लिए एक, एक महर्षियों के लिए, एक गंधर्वों के लिए, एक
जैसे पुरोहितों के लिए एक एक मतलब जैसी जैसी कैटेगरीज होती थी ना वैसा ऐसा एक महान उन्होंने बनाया पहले, ताकि उसका विस्तार करेंगे वही वाले जो उन्होंने बनाए थे। समझ में आ? ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए, और उन पुत्रों में भृगु जो है वो सबसे शक्तिशाली मुनि थे। बहुत सारे मुनि बनाए थे उन्होंने, जैसे भगवान ने क्या कहा, महर्षिणाम भृगुराम। महर्षियों में भी बहुत सारे बनाए मतलब मुनि हैं, लेकिन उन समस्त महर्षियों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुनि है वो है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के विषय में आप सब जानते ही हैं कि भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर उनकी चरण का चिन्ह है। वह भगवान जो संपूर्ण जीवों के हृदय में रहते हैं, उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर जिस महर्षि के चरण का चिन्ह है, वो वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। एक बार सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए थे, और वो सोचते थे, उन्होंने देखा कि शास्त्रों में विभिन्न विभिन्न देवताओं की महानता बताई गई है। जैसे अगर हम वेदों शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शिव पुराण में सबसे महान महिमा जो है वो शिव जी की लिखी हुई है, देवी पुराण में देवी की लिखी हुई है, और इस तरह से अलग अलग जितने भी पुराण हैं उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की महानता के विषय में बताया गया है। तो जो जीव जिस शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसी को सरेंडर करेगा ना, क्योंकि इतनी महानता उसकी सुनी। तो सारे ऋषियों ने सोचा इस तरह तो एक मनुष्य कभी भी 1.2 नहीं हो सकता, एक लक्ष्य होना चाहिए जीव का। तो हमें कैसे पता चले कि सारी जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे महान कौन है, मतलब सबसे महान कौन है, भगवान कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग अपने अपने अध्ययन के हिसाब से बता रहे थे। जिन्होंने मतलब शिव पुराण पढ़ा था तो वो कहते थे शिव जी बड़े हैं, जिन्होंने ब्रह्म पुराण पढ़ा था तो वो कहते थे ब्रह्मा बड़े हैं, कुछ विष्णु को बड़ा बताते थे। मतलब सारों जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं उनमें से ये तीन छांट के निकाले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ कह रहे थे क्योंकि सबका सृजन जो है वो ब्रह्मा जी ने किया है, इसलिए ब्रह्मा जी सबसे महान है, क्योंकि पैदा करने वाला महान होता है ना। तो कुछ कहते थे कि नहीं, विष्णु जी महान है क्योंकि सबको पालते हैं। परंतु कुछ लोग का ये है ना मत था कि नहीं, शिव जी सबसे महान है। तो सबने ये सोचा कि अब ये तो झगड़ा खत्म, ऐसे होगा नहीं, हम क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा, कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें ये पता चले कि इन सब में महान कौन है। अब इतने सारे महर्षि थे तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं कोई कैसे परीक्षा लेगा, परीक्षा लेके आ जाएगा, वो तरीका भी उसका सही होगा या नहीं होगा। अभी इतने बड़े महान जो त्रिदेव हैं उनकी परीक्षा लेने जाना है तो कोई साधारण व्यक्ति जैसे आज का यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा लेनी हो तो मेरे जैसे किसी नीच को तो नहीं बेटा भेजा जाएगा कि जाओ आप परीक्षा लेके आओ। तो कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी को, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को भेजना पड़ेगा ना। तो इस तरह सारे महर्षियों ने सोचा अब किसको भेजा जाए, किसको भेजा जाए। तब सारे महर्षियों ने एक मत होके कहा कि भृगु मुनि जाएंगे, क्योंकि भृगु ऋषि जो हैं वो सारे जितने भी महर्षि हैं उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो वो ये जान सकते हैं कि उन महादेवों की, इन तीन महादेवों की त्रिदेव जो है जिनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका किस तरह से परीक्षण किया जाए, उनकी परीक्षा कैसे दी जाए। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, और ब्रह्मा के पास जब पिता के पास जब एक पुत्र जाता है तो किस तरह से परीक्षा लेनी चाहिए, और क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं तो वो उनके बड़े भाई हुए तो किस तरह से उनका परीक्षण करना चाहिए, और भगवान विष्णु जो हैं वो आराध्य हैं तो उनका किस तरह से परीक्षण करना चाहिए, कैसे पता लगे कि इनमें से भगवान कौन है। तो भृगु मुनि जो है वो सबसे परीक्षा लेने के लिए गए। सबसे प्रथम वो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आसन पे बैठे हुए थे। अब एक पुत्र का यह कर्तव्य है कि जब भी वो अपने पिता के सामने आए, स्पेशली जब कुछ समय के बाद आए और पिता को देखते ही उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन भृगु मुनि क्योंकि परीक्षा लेने आए थे तो उन्होंने मुख से कोई ऐसा गलत शब्द नहीं बोला, कोई ऐसा व्यवहार अपने शरीर से नहीं किया, केवल मन से जो है ना, मतलब ऐसा उनको मन में ब्रह्मा जी को ऐसा हुआ कि मेरा बेटा आया है और मुझे प्रणाम तक नहीं किया, मतलब प्रणाम किया ही नहीं, ऐसे अपना काम करने लगा, बैठ गया आराम से इधर उधर, बातें बातें भी नहीं की प्रणाम। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो भृगु है वो इतना असंस्कृत हो गया, उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब पिता के सामने आते हैं तो सर झुकाकर उनसे प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, ये भी अभी संस्कार नहीं है। तो इतना ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ऐसे पुत्र को मुझे थप्पड़ मारना चाहिए, इतना मतलब उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो ब्रह्मा जी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके और बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया कि तुम इतना भी शिष्टाचार भूल गए हो कि जब पिता के सामने आते हैं तो किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें इतना भी पता नहीं है, तो महर्षि कहलाते हो तुम, अपने आप को इस तरह से व्यवहार करते हैं अपने पिताजी के साथ। तो हालांकि उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले थे लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी इतने ज्यादा क्रोधित हो गए। तब भृगु मुनि ने यह निश्चय निकाला कि भगवान तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान इतनी सी बात पर इतना ज्यादा क्रोध कैसे कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, भृगु मुनि जो है वहां से निकल गए, ब्रह्मलोक से निकल कर वो डायरेक्ट से गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जहां पर शिव जी निवास करते हैं और वो शिव जी जो है वो अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ अपने निवास स्थान पर बैठे हुए थे प्रसन्न मुद्रा में, और वहां पर जब भृगु मुनि आए तो दूर से आते देखकर शिवजी ने देखा, अरे मेरे बड़े भाई आए हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो बोला कि मेरे बड़े भाई को मुझे आलिंगन करना चाहिए, मुझे उनसे मतलब प्रेम करना चाहिए, वो आए हैं उनका स्वागत करना चाहिए। तो कैसे हम स्वागत करते हैं जो कोई आता है? तो जैसे ही शिवजी ने भृगु मुनि को देखा तो शिवजी जो है वो भृगु मुनि के पास गए और उनको आलिंगन करना चाहा, उनको ऐसे हग करना चाहा, लेकिन भृगु मुनि जो थे वो ऐसे शिवजी को ऐसे तिरस्कार कर दिया, बोला रुको 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 रुको, तुम मुझे आलिंगन करना चाह रहे हो, तुम मुझे स्पर्श करना चाह रहे हो, आप देखो तो सही अपना आपकी वेशभूषा तो देखो, सारे शरीर पर शमशान की राख लगी हुई है, मुर्दों की खोपड़ियों को तुमने माला बनाकर पहना हुआ है, गले में सांप लटक रहे हैं और इस तरह से तुम ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हो, तो तुम मुझे स्पर्श करोगे तो क्या मैं इतना अपवित्र हो जाऊंगा कि मुझे जाके जल्दी से जाके गंगा में स्नान करना पड़ेगा? तुम मुझे स्पर्श मत करो, दूर ही रहो, मुझे तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ स्पर्श नहीं कराना है खुद को। तो ब्रह्मा जी का उन्होंने केवल मानसिक अपमान किया था, उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन शिव जी को तो बोल दिया कि तुम तो कितने गंदे हो, आपकी वेशभूषा कितनी गंदी है, आप कितने गंदे रहते हो, तो मुझे स्पर्श नहीं करो। जब शिव जी ने ऐसे सुना, शिव जी तो गुस्से से क्रोध से पूरे लाल हो गए, उनके तीसरा नेत्र खुल गया और वो तो अभी भस्म कर देते भृगु मुनि को कि इतना उन्होंने इतना अपमान किया है मेरा, इस तरह से बात करते हैं। तो फिर है ना, अभी भृगु मुनि जो है वो वहां से भी भाग गए, यहाँ पर अगर मैं अधिक ठहरा तो ये तो शिव जी मुझे जलाकर क्रोध से भस्म कर देगा। फिर भृगु मुनि जो है वो भगवान विष्णु के पास गए। अब उन्होंने सोचा कि इतना क्रोध करने वाला भगवान नहीं हो सकता है, अब मैं विष्णु जी की परीक्षा लेता हूँ। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, नेत्र मून के बैठे हुए थे और अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। लक्ष्मी महारानी उनके चरण दबा रही थी और भृगु मुनि आए और दूर से आते ही भगवान विष्णु की वक्षस्थल पर उनकी छाती पर जोर से लात मारी। अब यहाँ पर ये देखना है कि ब्रह्मा जी का उन्होंने केवल तिरस्कार किया था, केवल उनको प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं की थी उनके साथ, कोई उनका अपमान नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो क्रोधित हो गए। शिव जी को तो उन्होंने मारा नहीं था, केवल शब्दों से बोला था कि आप अपवित्र रहते हो, फिर भी वो इतना क्रोधित हो गए। अब सबसे महान परीक्षा तो उन्होंने विष्णु भगवान की ली, क्योंकि उनको शरीर पर प्रहार किया, कुछ नहीं बिगाड़ा आपका किसी ने, और कोई आके आपको लात मार दे, आप चाहे कितने ही सहिष्णु क्यों ना हो, इतना तो पूछोगे ना, क्या किया मैंने, तुम मेरे साथ इस तरह कर रहे हो, इतना तो पूछोगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन विष्णु जी जो उस समय आनंद से आनंदित मुद्रा में बैठे हुए थे, जैसे उनको भृगु मुनि की लात लगी और उनकी नेत्र खुले, तब उन्होंने पहला काम क्या किया जानते हो, वो भृगु मुनि को अपने आसन पर बिठा लिया और अपने हाथों से उनके चरण को दबाने लगे और नेत्रों से अश्रु बहाने लगे और कहने लगे कि आप तो क्योंकि महर्षि हो, आपके चरण कितने कोमल हैं और मेरा हृदय, मेरी छाती, मेरा वक्षस्थल कितना कठोर है, आपके चरण जब मेरे वक्षस्थल पर लगे हैं तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा, काश ऐसा होता, मुझे पता होता कि आप मुझ पर प्रहार करने आ रहे हो तो मैं अपने हृदय को बहुत सॉफ्ट कर देता ताकि वो आपको कष्ट ना देता, मुझे बहुत खेद है महामुनि कि मेरे कारण आपको कष्ट भोगना पड़ा, मैं अपने इस कार्य से मेरी कारण आपको कष्ट हुआ होगा, इस कारण से मैं बहुत ज्यादा लज्जित हूँ आपके, इसलिए वो ब्रह्मा जो भगवान विष्णु हैं वो भृगु मुनि के चरणों में बैठकर उनके चरणों की सेवा करने लगे। तब भृगु मुनि ने देखा कि भगवान तो यही हो सकते हैं, जो चाहे कितना भी अपराधी जीव हो लेकिन वो उसके अपराध को नहीं मानते, वो उनके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कृपा करना। तो इस तरह से परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि ने यह घोषित किया सारे ऋषियों, सारे महर्षियों की सभा में कि यदि पूजनीय कोई है, यदि कोई पूजा करने योग्य है, यदि कोई भगवान है तो केवल भगवान विष्णु ही है। तो भृगु मुनि की इस कार्य से भगवान ने तो कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन उनकी पत्नी जो कि उनके चरण दबारी थी लक्ष्मी महारानी, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। उन्होंने कहा ये महर्षि है, इसको इतना भी पता नहीं है कि भगवान विष्णु के हृदय में तो मैं निवास कर रही हूँ, और भगवान को देखो, उनको अपने इन ब्राह्मण के चरण को दुख होने का तो कष्ट लग रहा है, उसके लिए तो वो दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिस हृदय में मैं विराजमान हूँ मुझे कितना कष्ट हुआ उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। तो इससे लक्ष्मी महारानी बहुत ज्यादा दुखी हुई। फिर उस समय लक्ष्मी महारानी ने समस्त जितने भी ब्राह्मण हैं उनको श्राप दे दिया, बोला मैं तुम्हारे पास नहीं टिकूंगी। तो हम देखते हैं ब्राह्मण सदैव ज्यादातर दरिद्र रहते हैं, उनको कितना भी मिलता है वो दरिद्र रहते हैं, और लक्ष्मी महारानी की उनके ऊपर कृपा नहीं होती। तो हमें ये देखना चाहिए कि भले हम किसी भी स्टेज पर पहुंचे, कोई भी कार्य करें हम, कुछ भी हो, लेकिन भगवान की महानता को सदैव हमें सोचना चाहिए कि हे भगवान है, उनकी महानता है, तो हमें कोई ऐसा कार्य ना करना चाहिए जिससे भगवान का अनादर हो। भगवान भले क्रोध नहीं करते, लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं वो कभी कोई ऐसी बात पसंद नहीं करते हैं कि भगवान के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। तो हमें भगवान की सेवा में सदैव सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं महर्षि राम भृगु रहम, वो भृगु मुनि जिसके चरण के निशान को, चरण चिन्ह को मैं अपने वक्षस्थल पर धारण करता हूँ, वह मैं हूँ। और गिराणाम अस मेक अक्षरम, जितने भी वेदों के मंत्र हैं वो उनमें ओंकार जो है वो बहुत ज्यादा प्रमुख है, और भगवान कहते हैं कि वाणी में मैं ओंकार हूँ, और आगे कहते हैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी। वास्तव में भक्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम कि मैं यज्ञ और तपस्या का भोगने वाला हूँ। तो इस और इसके बाद 18वें अध्याय में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तप चैव पावनानि मनीषिणा कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ अवश्य करना चाहिए, तपस्या अवश्य करना चाहिए। तो यज्ञ शब्द श्रवण करके हमें ऐसा लगता है कि अग्नि जलानी होगी, उसमें आहुति डालनी होगी और धुआं होगा, ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, यज्ञों में जो सबसे महान यज्ञ है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे महान यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 में करभाजन मुनि की सभा में जब कलयुग के जीवों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसके विषय में बताया जा रहा था कि कलयुग के जीव किस तरह से भगवान को प्रसन्न करेंगे और जो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो किस तरह से भगवान की सेवा करेंगे, तब वहां बताया जाता है कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम यानी कृष्ण ने जो शब्द कहे हैं कृष्ण के ही अक्षरों को वर्णन करेंगे, कृष्ण के शब्दों को दोहराएंगे और त्विष अकृष्णम लेकिन फिर वो कृष्ण नहीं होंगे यानी काले नहीं होंगे, वो गौर कांति के होंगे, गौर रंग होंगे, गौरांग। कृष्ण वर्णम कृष्ण त्विषा कृष्णम और वो अकेले नहीं होंगे, सांगो पंगस्त पार्षदम वो अपने पार्षदों के साथ होंगे। कौन होंगे उनके पार्षद? गौरांग महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर और वो अपने समस्त पार्षदों के साथ आएंगे कलयुग में और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय ही और संकीर्तन यज्ञ के विषय सारे जीवों को उत्साहित करेंगे जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करेंगे कलयुग में। कौन करेंगे? यजंते ही सुमेधसः, मेध कहते हैं बुद्धि को और जिनकी बुद्धि बहुत ही सुष्ठु रूपेण बहुत ही अच्छी बुद्धि होगी, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे कलयुग में। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि कलयुग में यदि कोई यज्ञ है, क्योंकि भगवान ने कहा यज्ञ तो आपको जरूर करना होगा क्योंकि यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ और यज्ञ दान और तपस्या ये कार्य कभी भी नहीं छोड़ने होंगे। तो यज्ञ कौन सा करना है? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि समस्त ध्वनियों में ओंकार भगवान श्री कृष्ण के रूप है और समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध स्वरूप है। अभिनत्वान नाम नामिनु, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां अपने नाम के अंदर डाल दी हैं। तो जितनी शक्ति भगवान के अंदर है उतनी ही भगवान के नाम में है। तो यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उसकी जीवा जो है वो यशोदा बन जाती है और उस जीवा पर भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर और भगवान आके खेलते हैं उस जीवा पर, वह जगह जो है वह वृंदावन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध यदि कुछ इस भौतिक जगत में है तो वो है शुद्ध करना, जो है ना वो यज्ञ से शुद्धिकरण होता है और सबसे महान यज्ञ है महामंत्र का जप करना। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है किंतु हरे कृष्ण महामंत्र में हिंसा नहीं है, इससे केवल कल्याण होता है। पशु बलि में तो हिंसा होगी ना, लेकिन इससे केवल कल्याण होता है। जो बोलता है उसका कल्याण होता है, जो सुनता है उसका कल्याण होता है, जिस जगह पे बोला जाता है उसका कल्याण होता है, केवल कल्याण होता है। इसमें भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां भर दी हैं। और इस भौतिक जगत में, आज इस कलयुग में, यदि किसी चीज से जीव का कल्याण हो सकता है, यदि किसी कोई कार्य करने से मनुष्य को संतुष्टि मिल सकती है, सुख मिल सकता है, यदि कृष्ण की प्राप्ति संभव है इस कलयुग के, ये जो इतने पतित जीव हैं, इतने अपराधी हम जैसे अपवित्र जीव हैं, उनके लिए यदि कोई किरण है जिसके द्वारा हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, कोई सहारा है, तो वो भगवान के पवित्र नाम का जप है। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरा नाम का जप है, यज्ञ नाम जप यज्ञ। इसमें समस्त जग में जो कुछ भी शुभ है वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो कुछ भी महान है वो कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे भगवान कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम इनकी जो अचल है, जो टिका हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो एक स्थिर वस्तु है वो है हिमालय। पहले श्री प्रभुपाद जी बताए, पहले भगवान ने मेरु पर्वत कहा था, पर्वतों में मैं सुमेरु हूँ। सुमेरु बहुत विशाल पर्वत है, सोने का पर्वत है, परंतु कभी कभी वो चल हो जाता है, लेकिन एक ही जगह पर स्थिर रहे तो वो है हिमालय। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ महान है, जो कुछ तुम देख रहे हो और आपको लग रहा है कि इनमें सबसे हाईएस्ट वस्तु, इस कैटेगरी में सबसे महान वस्तु यह है, वो मेरी ही विभूति है, मेरा ही एक अंश है। तो भक्तों, हमें सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा। क्योंकि भगवान को अर्जुन ने तो कह दिया कि आप जो कुछ बोल रहे हो, सर्वमेतद्रितम मन्ये यन्मान वदसि केशः, कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे मैं इज इट स्वीकार करता हूँ। तो हम सबका कर्तव्य है कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं हमें उसको स्वीकार करना है, और हमें हृदय से भगवान को समर्पित करना है। क्योंकि भगवान से महान कुछ और है नहीं, और भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसकी शरण में जाया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।